का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि विक्रम के खान की लाश श्याली के बंगले पर मिली, वहां पीले रंग का एक बाल भी मिला। क्या विक्रम की मौत पेंटिंग की वजह से हुई या श्याली के प्यार में उसने खुदकुशी कर ली? कौन थे वो नकाबपोश और क्या हुआ हाशना का हाल, जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ का ये भाग। बख्तावर खान की हवेली शहर के पास के एक कस्बे संदलगढ़ में थी। संदलगढ़ का पुराना नाम चंदनगढ़ था। अंग्रेजों ने जिस तरह से तमाम जगहों के नाम विशेष उच्चारण की वजह से बदल दिए थे, वैसे ही उन्होंने चंदनगढ़ से सैंडलगढ़ कर दिया था। बाद में लोगों ने अपने उच्चारण के मुताबिक उसे संदलगढ़ कर दिया। इस इलाके में कदम रखने पर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। बड़ा शांत इलाका था। 25 किलोमीटर के इलाके में चंदन के जंगल फैले हुए थे। जंगल के पश्चिम की तरफ एक कुदरती झील भी थी। झील इस तरह की बनावट की थी कि नदी होने का एहसास करवाती थी। उत्तर की तरफ मिट्टी के ऊंचे पहाड़ बने हुए थे, उन पर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे थे। इसकी वजह से बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी के चश्मे यानी सोते फूट पड़ते थे। उनमें से मिठास लिए खुशबूदार पानी बहता था। जंगल की मिल्कियत पुश्तैनी तौर पर बख्तावर खान के पास थी। कभी अंग्रेजों ने उनके परदादा को इसकी रियासत दी थी। बख्तावर खान को इस जंगल से बहुत प्यार था। टिम्बर माफिया से चंदन के पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने बाहरी इलाके में हर 5 किलोमीटर पर ऊंचे टावर बना रखे थे। वहां से गार्ड 24 घंटे निगरानी करते थे। जंगल के एक हिस्से में आबादी थी, उसी आबादी के बीच में बख्तावर खान की बड़ी सी हवेली थी। हाशना ने इंस्पेक्टर कुमार सोहराब की अपने दादा से मुलाकात करवाई और बहाना बनाकर वहां से खिसक ली। वो नहीं चाहती थी कि इस दौरान वो वहां मौजूद रहे। बख्तावर ने सोहराब का बड़ी खुश दिली से स्वागत किया। वो 78 साल का एक नौजवान था, यकीनन नौजवान ही था, कदकाठी ही नहीं, चेहरे मोहरे से भी वो कहीं से बूढ़ा नजर नहीं आता था। उसने सोहराब से जब हाथ मिलाया तो उसके हाथों की मजबूत पकड़ से सोहराब को भी इसका अंदाजा हो गया। बख्तावर खान का रंग सफेद लाल सा था। बड़े से लंबोतरे चेहरे पर घनी मूछें उस पर फपती थी। सर पर घने घुंघराले बाल थे। सफेद हो चले बालों पर अगर उसने खिजाब लगाया होता तो जानना मुश्किल होता कि उसकी उम्र क्या है। वो इस उम्र में भी गजब का चुस्त दुरुस्त था। बख्तावर खान ने उसे बड़ी सी बैठक में ले जाकर बैठा दिया। पुराने तौर तरीके की बैठक थी। काफ़ी मोटी दीवारें थीं, छत आज के मुकाबले दुगनी ऊंची। ऊंची दीवारों पर रोशनदान लगे थे। दीवारों के बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। इसकी वजह से बिना बल्ब के भी बैठक खूब रोशन थी। दीवारों पर पेड़ों के खूबसूरत डिजाइन वाले पर्दे पड़े थे। दीवार के एक तरफ बख्तावर के बुजुर्गों की बड़ी बड़ी पेंटिंगें लगी थीं, दूसरी तरफ बारा सिंघे की कई सारी सींगें जड़ी हुई थीं। भाई मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, माशाल्लाह तुम अब काफी बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, बख्तावर खान ने सोहराब को एक खूबसूरत सोफे पर बैठाते हुए कहा। कुमार सोहराब ने बख्तावर की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा। बख्तावर खान उसका मतलब समझ गया। उसने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते होगे, दरअसल तुम्हारे दादा कुमार महताब मेरे जिगरी दोस्त थे। यूं तो वो उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन हमारी यारी गजब की थी। मेरी तरह उन्हें भी शिकार खेलने घूमने का भाई बड़ा शौक था। जंगल में ही डेरा होता था, हम महीनों जंगल में ही रहते थे, वहीं शिकार होता था, वहीं खाना सोना। अब तो बस किस्से ही बचे हैं।
बारा सिंघे की ये सींगे क्या उसी दौर की निशानी है शायद?
मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
जी मैं काफी पहले आ जाता लेकिन थोड़ा व्यस्त रहा इधर।
बेटे तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो,
लिहाज से तुमसे कुछ कहते तो नहीं बन रहा, लेकिन मजबूरन कहना पड़ेगा, बख्तावर खान ने सोहराब की तरफ देखते हुए कहा।
जी आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बातें मेरे और आपके बीच रहेंगी हमेशा।
इसके बाद बख्तावर ने पेरिस में मॉडल से शादी और न्यूड पेंटिंग के बारे में सारी बातें दोहरा दी। बख्तावर ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिन्हें सुनकर सोहराब चौंक पड़ा। इसके बाद बख्तावर ने कहा,
बेटा मैं चाहता हूं कि तुम वो पेंटिंग तलाश करो, लेकिन इस बात का किसी को पता ना लगने पाए।
मैं आपसे वादा करता हूं ये बात किसी को पता ना चलेगी। पेंटिंग के साथ और क्या चोरी हुआ है?
अरे यही तो ताज्जुब की बात है कि पेंटिंग के सिवा कुछ भी चोरी नहीं हुआ।
क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहां पेंटिंग चोरी हुई थी?
मैं चाबी लेकर आता हूँ।
कुछ देर बाद बख्तावर खान चाबी लेकर लौट आया और सोहराब को लेकर वो हवेली के पीछे वाले हिस्से में चला गया। एक दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक गया। उसने बड़े से दरवाजे का ताला खोल दिया। उसके पीछे सोहराब भी वहां दाखिल हो गया। ये एक बड़ा सा हॉल था। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। हॉल के बीच में एक बड़ी सी मेज और सोफा पड़ा हुआ था। हॉल के एक तरफ एक दरवाजा नजर आ रहा था। बूढ़े ने उसका दरवाजा खोला। ये इस बड़े से हॉल से सटा एक छोटा सा हॉल था। यहाँ एक तरफ एक बक्सा रखा हुआ था। बूढ़े ने बक्से का ताला खोल दिया। बक्से में भी कुछ पेंटिंग्स थी।
क्या ये सब हमेशा ऐसे ताले में ही रहते हैं?
नहीं नहीं, पेंटिंग चोरी होने के बाद ताला लगाया गया है।
सोहराब को हाशना बता चुकी थी कि पेंटिंग उसने ही विक्रम को दी थी। इसके बावजूद उसने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लिया और हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर जांच करने की एक्टिंग करने लगा।
अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ, तुम्हें बिना चाय पानी करवाए सीधे यहाँ ले आया। तुम बेटा मसला हल करो, मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ।
उसके जाने के बाद कुमार सोहराब ने बक्से को उलट पुलट डाला। उसे एक डायरी की तलाश थी जिसका जिक्र हाशना ने किया था। आखिरकार उसे वो डायरी एक कोने में मिल गई। सोहराब ने डायरी निकाल ली और उसे तेजी से पढ़ने लगा। सोहराब कुछ लाइनें पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाता था क्योंकि वो बातें उसके काम की नहीं थीं। पन्ने पलटते पलटते वो एक जगह रुक गया। वहाँ पेरिस की एक मॉडल से मुलाकात, शादी और अलग होने का जिक्र था। ये पूरा किस्सा कई पन्नों में फैला हुआ था। सोहराब ने मोबाइल निकालकर तेजी से उन पन्नों को स्कैन करना शुरू कर दिया। जल्द ही वो इस काम से फारिग हो गया और उसने डायरी को उसी तरह रख दिया। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी।
हाँ बेटे, किस नतीजे पर पहुंचे?
खान साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी गायब पेंटिंग मैं आप तक पहुंचा दूं। बख्तावर खान ने बक्से में ताला लगा दिया और फिर दोनों हॉल से बाहर आ गए। इसके बाद उसने दरवाजे में भी ताला लगा दिया। बख्तावर ने बहुत मोहब्बत से सोहराब को नाश्ता करवाया, हालांकि सोहराब को नाश्ते की एकदम ख्वाहिश नहीं थी। इंस्पेक्टर सोहराब शाम को संदलगढ़ से वापस आ गया। आते ही वो सीधा कोतवाली पहुंचा था। उसने मनीष से विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सोहराब के शक को सही ठहराया था। विक्रम ने नींद की ज्यादा गोलियां खाकर खुदकुशी की थी। रात के 1 बजे थे। श्याली के बंगले को सील कर दिया गया था। गेट के बाहर एक सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में 4 कांस्टेबल रखवाली के लिए तैनात थे। तभी एक नकाबपोश पीछे की चहार दीवारी पर चढ़ने के बाद बड़े आराम से अंदर कूद गया। उसने रबर के जूते पहने हुए थे, इसलिए जूतों की धमक ज्यादा पैदा नहीं हुई। इसके बाद वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया और पीछे की बालकनी में पहुंच गया। वहां उसे एक खिड़की खुली मिल गई और वो बड़ी आसानी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाने के बाद उसने टॉर्च जला ली। टॉर्च की रोशनी किसी बारीक लकीर जैसी थी जो एक पॉइंट की शक्ल में चीजों पर रेंग रही थी। नकाबपोश बड़े इत्मीनान में था। वो कमरे के हर सामान की तलाशी लेने लगा। इसके बाद उसने अलमारी खोल ली। वहां भी उसने पूरी तसल्ली से तलाशी ली। वहां से निकलने के बाद वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। कमरा लॉक था। ये श्याली का कमरा था। नकाबपोश ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और कुछ मशक्कत के बाद ताला खुल गया। वो कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। साजिन सलीम को खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद इंस्पेक्टर मनीष सीधे कोतवाली पहुंचा था। वहां कुछ देर बैठने के बाद वो दो सिपाहियों के साथ विक्रम खान के स्टूडियो की तरफ निकल गया। वो एक बार पहले भी वहां जांच करने के सिलसिले में जा चुका था। तब विक्रम खान ने उसे बुलाया था। आज वो स्टूडियो को सील करने के लिए जा रहा था। वहां पहुंचने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्टूडियो का ताला टूटा हुआ था, अलबत्ता दरवाजा बंद था। मनीष ने दरवाजा खोला और सीधे अंदर पहुंच गया। पिछली बार हॉल में पेंटिंग का अंबार लगा हुआ था, लेकिन आज सब कुछ व्यवस्थित था। उसने हॉल का बड़ी बारीकी से जायजा लिया। उसके बाद वो दूसरे कमरे में चला गया। इस कमरे में विक्रम आराम किया करता था। वहां बेड पर एक न्यूड पेंटिंग रखी हुई थी। ये एक जवान औरत की पेंटिंग थी। पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। पेंटिंग में एक विदेशी महिला बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके सीने पर बिखरे हुए थे। मनीष जब पिछली बार यहां आया था तो वो पेंटिंग वहां पर नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने मोबाइल से पेंटिंग की 2-3 तस्वीरें उतार ली। इसके बाद उसने कमरे का मुआयना किया और फिर बाहर निकल आया। दोनों सिपाही बाहर खड़े हुए थे। उसने सिपाहियों से दरवाजे पर ताला लगाकर उसे सील करने के लिए कहा। सिपाहियों ने साथ लाया ताला लगा दिया। इसके बाद उस पर सूती कपड़ा लपेट कर कपड़े को किसी तरह सुई और धागे से सी दिया गया। बाद में बीचों बीच मोमबत्ती से लाख पिघला कर लगाया और उस पर पुलिस की मोहर मार दी। इस काम से फारिग होने के बाद मनीष नीचे आ गया। बाहर आने के बाद उसने इंस्पेक्टर सोहराब को कई बार फोन मिलाया, लेकिन वो नॉट रीचेबल बताता रहा। साजिन सलीम ऑफिस में बैठा शियाली की फाइल को ध्यान से पढ़ता रहा। वो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। कुछ बातें वो अपनी जेबी डायरी में नोट करता जा रहा था। जरूरी बातें मोबाइल के नोट पैड में भी लिखी जा सकती थीं, लेकिन सोहराब और सलीम हमेशा इससे गुरेज करते थे। सोहराब का साफ कहना था कि मोबाइल फोन सेफ नहीं होते, ना तो जरूरी बातें उस पर की जानी चाहिए और ना ही उसमें कुछ नोट किया जाना चाहिए। इस बात का ख्याल दोनों रखते थे। सलीम को पूरी फाइल खंगालने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। कुछ सवाल थे जिसे उसने डायरी में नोट किया। ये सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। पहला सवाल खुद शियाली थी, यानी उसकी रहस्यमय मौत। दूसरा सवाल वो मोबाइल ऐप थी, जिसकी लॉन्चिंग उसकी मौत के ही दिन बड़ी खामोशी से की गई। आखिर उस मोबाइल ऐप का राज क्या था? तीसरा सवाल पेंटर विक्रम खान की खुदकुशी थी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिससे विक्रम हार गया था और मौत को गले लगा लिया था? हाशना और श्रेया भी एक सवाल थी। श्रेया पर हमले क्यों हो रहे थे और हर एपिसोड में वो मौजूद थी? हाशना के बाल का डीएनए करवाया जा रहा था। साजन सलीम ने जेब से वैन गॉग का पाउच निकाला और पाइप में तंबाकू भरने लगा। अचानक उसके जहन में श्रेयाली की फिल्म की बात कौंध गई। श्रेयाली की मौत के बाद भी वो फिल्म बन रही थी। साजन सलीम कैप्टन किशन और शैलेश जी अलंकार को पूरे मामले में कहीं फिट नहीं कर पा रहा था। उसने पाइप सुलगा लिया और हल्के हल्के 2-3 कश लेने के बाद फिर से कलम और डायरी संभाल ली। एक सवाल अचानक उसके जहन में कौंध गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शियाली की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी कैप्टन किशन के पास चली जानी है, इसी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया? उसने पाइप की राख एश्रे में झाड़ दी और पाइप जेब में रख लिया। सलीम ने ऑफिस के फोन से एक नंबर डायल किया और पूछा, कैप्टन किशन का वकील कौन है? दूसरी तरफ से उसे नाम बता दिया गया। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर आ गया। तकरीबन 1 किलोमीटर चलकर वो खुफिया विभाग के अहाते से बाहर आ गया। गेट से बाहर आने के बाद वो एक तरफ पैदल ही चल दिया। ये इलाका शहर से बाहर था, इधर प्राइवेट टैक्सियां नहीं आती थी। सर्जन सलीम चाहता तो ऑफिस की कार यूज कर सकता था, लेकिन उससे इसने गुरेज किया। तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसे प्राइवेट टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठने के बाद उसने ड्राइवर से लिंकन रोड चलने को कहा। कुछ देर बाद टैक्सी फर्राटे भरने लगी। सलीम ने जेब से डायरी निकाल ली और उस पर की गई नोटिंग को देखने लगा। सलीम को कुछ देर बाद टैक्सी ने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने उतार दिया। पूरे बिल्डिंग में वकीलों के ऑफिस बने हुए थे। बिल्डिंग के बाहर बैठे गार्ड से उसने संदर्भ सिंह एडवोकेट के बारे में पूछा। उसने बिल्डिंग और फ्लैट नंबर सलीम को बता दिया। इसके बाद वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद सलीम एडवोकेट संदर्भ सिंह के सामने था। ये एक बूढ़ा सा आदमी था, शक्ल से काफी चिड़चिड़ा लग रहा था। उसने गोल चश्मा लगा रखा था। संदर्भ ने चश्मे के ऊपर से सलीम को घूर कर देखा। सलीम ने जेब से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था,
संदर्भ ने खरखराती आवाज में कहा। जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अर्जेंट था इसलिए सीधे चला आया।
खुफिया विभाग को मेरी क्या जरूरत आन पड़ी?
क्या आप कैप्टन किशन के वकील हैं?
हूँ तो,
संदर्भ का लहजा डपटने वाला था। संदर्भ के इस तरह बात करने पर सलीम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसका लहजा अब भी मुलायम था। जनाबे अली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शियाली ने क्या कोई वसीयत तैयार करवाई थी? सलीम ने नरमी से पूछा।
बहुत देर से जागे? ये बात तो आपको शियाली के गायब होने के बाद ही मालूम कर लेनी चाहिए थी।
संदर्भ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन विक्रम खान शियाली का वारिस था, इसलिए हमारे लिए ये सवाल विक्रम की मौत से ज्यादा मौजू है। जवाब में संदर्भ ने कुछ नहीं कहा और झुक कर सामने रखी फाइल स्टडी करने लगा। सलीम का मूड बुरी तरह ऑफ हो रहा था। वो बैठा अजीब अजीब मुंह बनाता रहा। संदर्भ के जूनियर वकील पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी हंसी निकल पड़ी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। काफी देर हो गई तो सलीम ने तेज आवाज में खखारा।
सब्र रखिए,
बूढ़े ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। कुछ देर बाद बूढ़े ने फाइल बंद करके एक तरफ रख दी। उसके बाद उसने कहा,
मिस्टर जासूस, शियाली की अभी इतनी उम्र नहीं थी कि वो अपनी वसीयत तैयार करवाती।
सर्जन सलीम आश्चर्य से संदर्भ का चेहरा ताकता रहा। इसके बाद बूढ़े ने जूनियर वकील से कलमारी से शियाली की फाइल निकालने को कहा। जूनियर वकील ने फाइल संदर्भ के सामने रख दी। उसने फाइल से एक कागज निकाल कर सर्जन सलीम को दे दिया। सलीम बड़े ध्यान से कागज को पढ़ने लगा। ये कैप्टन किशन की तरफ से तैयार करवाया गया एक कानूनी दस्तावेज था। इसके मुताबिक शियाली का बंगला और उसकी बाकी दौलत लड़कियों के अनाथ आश्रम को दान कर दी गई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि दस्तावेज पर आज की तारीख पड़ी थी, यानी यह दस्तावेज विक्रम खान की मौत के बाद तैयार करवाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी। सलीम ने दस्तावेज पढ़कर संदर्भ को वापस कर दिया। संदर्भ ने दस्तावेज लेते वक्त रहस्यमय अंदाज में सर्जेंट सलीम की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट से सलीम के बदन में छुरछुरी सी दौड़ गई। सलीम तुरंत वहां से उठा और चला गया। उसके बाहर निकलते ही संदर्भ ने किसी का फोन डायल किया। लिफ्ट से सलीम नीचे आ गया और टहलता हुआ सड़क पर पहुंचा। उसने एक टैक्सी रोकी और पीछे का गेट खोलकर उस पर सवार हो गया। उसने टैक्सी ड्राइवर से शेक्सपियर कैफे चलने को कहा। टैक्सी के आगे बढ़ते ही सर्जन सलीम का एक कार ने पीछा करना शुरू कर दिया। नकाबपोश तकरीबन सवा घंटे तक शियाली के कमरे में था। कमरे से बाहर निकलकर उसने फिर से उसमें ताला लगा दिया। उसके बाद वो बगल के दूसरे कमरे में चला गया। दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी, लेकिन यहां ताला नहीं था। यह कमरा शायद मेहमान खाना था। यहां ज्यादा सामान भी नहीं था। नकाबपोश ने टॉर्च की रोशनी में वार्डरोब खोलकर देखा। उसमें कुछ कपड़े टंगे हुए थे। उसने बेड का गद्दा भी उलट पलट कर देखा। नकाबपोश ने अपनी विशेष टॉर्च बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर चारों तरफ अंधेरा था। कुछ झिंगुरों की झाए झाए के सिवा कुछ नहीं था। नकाबपोश ने दरवाजे में कुंडी लगा दी। वो जैसे टकराने वाली चीज जमीन पर गिर पड़ी और साथ ही एक लड़की की चीख हवा में गूंज गई। सलीम ने टैक्सी ड्राइवर को शेक्सपियर कैफे पर रुकने के लिए कहा। टैक्सी रुकते ही उसका पीछा करने वाली कार तेजी से आगे निकल गई। सलीम पीछा किए जाने से पूरी तरह बेखबर था। दरअसल एडवोकेट संदर्भ सिंह ने उससे जिस लहजे में बात की थी, उससे उसका मन उखड़ा हुआ था। दूसरे वो थककर चूर हो रहा था। उसने टैक्सी का किराया अदा किया और कैफे में दाखिल हो गया। हॉल में नाटककार शेक्सपियर की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी। सलीम ने थोड़ा सा झुककर बड़े अदब से मूर्ति को विश किया। इस वक्त हॉल में काफी भीड़ थी। उसने हॉल में बैठे लोगों पर एक उचटती सी नजर डाली।
और एक कोने की मेज पर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद ही एक वेटर उसका ऑर्डर लेने आ गया। दो टर्किश कॉफी, एक्सक्यूज मी, मुझे शेक्सपियर के किस्से सुनने हैं, किसी को भेज दीजिए प्लीज, साजन सलीम ने वेटर से कहा। कुछ देर बाद एक खूबसूरत लड़की उसकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। श्योर, वेलकम मिस मिस रक्सीना, लड़की ने सलीम की बात पूरी कर दी। लड़की बड़ी अदा से साजन सलीम के सामने कुर्सी पर बैठ गई। शेक्सपियर के बारे में किससे सुनेंगे, ट्रेजेडी या ह्यूमर, रक्सीना ने पूछा। कुछ भी सुना दीजिए।
आपको विलियम शेक्सपियर के कुछ दिलचस्प फैक्ट सुनाती हूँ, रक्सीना ने कहा।
शेक्सपियर कैफे की खास बात यही थी कि यहाँ आने वाले मेहमानों को लड़कियाँ शेक्सपियर के किस्से या नाटकों के प्रसंग सुनाती थीं। इसके बदले में वो एक कॉफ़ी पीती थीं और ग्राहक खुशी से जो भी टिप दे दे। सलीम ने भी अपनी बोरियत दूर करने के लिए आज ये ख्वाहिश की थी। नतीजे में रक्सीना उसके सामने बैठी थी। शेक्सपियर नए शब्दों को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे और शब्दों को लेकर नए प्रयोग करते रहते थे। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने अंग्रेजी भाषा को तकरीबन 3000 नए शब्द दिए हैं। उस वक्त अंग्रेजी इतनी रिच नहीं थी। उन्होंने कई सारे स्लैंग्स और मुहावरे भी लोगों में पॉपुलर किए। शेक्सपियर नए शब्दों को लेकर इतने उत्साहित रहते थे कि एक बार वो अपनी एक देहाती प्रेमिका को किस करने जा रहे थे। भावुक होकर प्रेमिका ने एक शब्द कहा। शेक्सपियर ने चुंबन बीच में ही रोक दिया और डायरी और कलम निकाल कर उस शब्द को पहले लिखा और फिर चुंबन लिया। रक्सीना की किस्सा गोई का अंदाज बहुत निराला था। सलीम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालकर टिप के तौर पर रक्सीना के हाथों पर रख दिया। रुपए मिलते ही रक्सीना सीट से उठ गई।
अरे नहीं नहीं, प्लीज बैठिए, मैंने कॉफी मंगवाई है।
सलीम की बात पूरी होते ही मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने फोन निकाल कर देखा, इंस्पेक्टर मनीष का कॉल था।
एक्सक्यूज मी,
सलीम ने रक्सीना से कहा और सीट से उठ गया। फोन रिसीव करते ही उधर से मनीष की आवाज आई। सर, कुमार सोहराब साहब का फोन नहीं मिल रहा है। मुझे विक्रम के खान के स्टूडियो से एक न्यूड पेंटिंग मिली है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ।
आप कोठी पर पहुँचिए, शायद वो वहीं होंगे, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ, ओके?
साजन सलीम ने कहा और वापस टेबल पर लौट आया। वहाँ रक्सीना उसका इंतज़ार कर रही थी। टेबल पर कॉफ़ी रखी हुई थी। सलीम के पहुँचते ही रक्सीना कॉफ़ी बनाने लगी। पहला कप उसने सलीम को थमा दिया। उसके बाद एक कप कॉफ़ी उसने अपने लिए बनाई। सलीम का दिमाग पेंटिंग में उलझ गया था। उसने जैसे तैसे कॉफ़ी ख़त्म की और रक्सीना से इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ।
हम फिर मिलेंगे, शेक्सपियर के किसी नए किस्से के साथ,
साजन सलीम ने जाते हुए रक्सीना से कहा और काउंटर पर कॉफ़ी के पैसे अदा करके बाहर निकल गया। रक्सीना की निगाहें देर तक उसका पीछा करती रहीं। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आखिरकार कौन थी रक्सीना और सार्जेंट सलीम से मिलने की उसकी क्या वजह थी? विक्रम के खान के यहां से बरामद हुई न्यूड पेंटिंग क्या वही न्यूड पेंटिंग है जिसकी तलाश हाशना को है? कौन थे वो नकाबपोश जिन्होंने उस लड़की पर वार किया और कौन थी वो लड़की? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का आखिरी भाग, सिर्फ गाथा पर।